भवतु वासुदेवाय राजोवाच कहीं कहीं से परीक्षित वाच है पांच रजस्तम स्वभाव ब्राह्मण वृत्रस्य पात्मनः नारायणे भगवते कथमाश दृढ़मतिः देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां च अमलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्राणेणोपजायते राजोवाच महाराज परीक्षित ने पूछा रजस्तम स्वभावस्य रजोगुण और तमोगुण स्वभाव वाले का ब्रह्मान हे वेद जानने वाले वृत्रस्य वृत्र का पापमनः उसका जीवन पापमय था उसका नारायण नारायण में भगवती श्री भगवान में कथा कैसे आसीत हेतु दृढ़ा मति है अनन्य मति देवानां देवताओं की शुद्ध सत्वानां जो शुद्ध सत्व में रहते हैं ऋषीणां और ऋषियों की च और अमलात्मनां जिनका हृदय राग द्वेष आदि से रहित है ऐसे लोगों की भक्ति ही प्रेम मुकुंद चरण मुक्ति देने वाले भगवान श्रीकृष्ण में मां नहीं प्रायण प्राय उपजायते उत्पन्न होती है श्री श्री राधा रास बिहारी जी के प्रांगण में इनके आश्रय में हम लोग बैठ कर पुनः श्री वृत्रासुर जी के पूर्व जीवन की कथा श्रवण करेंगे। आप सब भक्तों को बहुत धन्यवाद है कि आप श्रवण के लिए पधारे हैं। चार अध्यायों में वृत्रासुर जी की कथा हुई थी जिनमें यह दिखाया गया कि युद्ध के समय में भी किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में उनकी मति दृढ़ थी। युद्ध एक ऐसा समय होता है जब केवल मारने काटने की बात होती है, बहुत घोर स्वभाव उस समय व्यक्ति का हो जाता है, विजय की आकांक्षा रहती है। परंतु हम लोगों ने सुना पढ़ा इसके पहले और भक्त लोग तो पढ़ते नहीं रहते हैं कि वृत्रासुर जी भगवान इंद्र के वज्र द्वारा आहत होकर शरीर त्यागना चाहते हैं और इंद्रदेव से विनय कर रहे थे कि आप अपना वज्र निक्षेप कीजिए चलाइए तो मैं अपने मन को भगवान संकर्षण के चरणारविंद में रखूंगा और आपके वज्र द्वारा मेरा यह शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा और मैं जाऊंगा भगवान के पास, मैं स्वर्ग का राजा नहीं बनना चाहता हूं, आप डरिए मत, मैं स्वर्ग चाहता नहीं हूं। और इंद्र के साथ वृत्रासुर जी की बात हो रही थी, बात होते होते तब तक वृत्रासुर जी ने सोचा कि मैं इंद्र से क्यों कुछ कहूं, साक्षात अपने प्रियतम भगवान से ही क्यों न मैं अपने मन के भाव को निवेदित करूं। और अकस्मात वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। इंद्रदेव हाथ में वज्र लिए लिए सब देख रहे हैं, सब देवता खड़े थे और धृतराष्ट्र भगवान से विनय करने लगे उस भीषण युद्ध स्थल में। ये चार श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भरतास्मि भूयः मनः स्मरेतास्तुतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः न मातृष्ठम् न च पारमिष्ठम् न सार्वभौमम् न मेन्द्रभीष्म्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवम् वा समञ्जसतविरहयकांश। और इसके बाद है अजात पक्षा ममोत्तम श्लोक गणेश सख्यम इत्यादि। वृत्रासुर जी कह रहे हैं, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मुझमें आपके चरण कमल को पाने की योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे अपने कर्मों के अनुसार कहीं न कहीं जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हे नाथ, जैसे मैं पहले चित्रकेतु नामक जीवन में आपके चरण कमलों के दासों का दासानुदास था, इसी तरह से मेरा जहां भी जन्म हो पुनः मैं आपके चरणारविंद के दासों को दासों का दास बनूं। हे प्रियतम, हमारा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी बाणी उच्चारण करे और मेरा शरीर मेरी इंद्रियां आपकी सेवा में लगी रहे। हे प्रभु, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग नहीं चाहता हूं, मैं ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं चाहता हूं, इस पृथ्वी का सार्वभौम पद नहीं चाहता हूं, मैं योग सिद्धि चाहता हूं, मैं मोक्ष चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपका चरण कमल। और अपनी उत्कंठा को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया, हे नाथ, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं और जैसे बंधा हुआ बछड़ा दूध पीने के लिए अपने मां की प्रतीक्षा करता है और जैसे परदेश में गए हुए अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है फिरिया उनकी सेवा करने के लिए, उसी तरह से हे कृष्ण, मेरा मन आपको देखने के लिए आपकी सेवा करने के लिए छटपटा रहा है। और फिर कहते हैं, मैं जहां भी जन्म लूं मेरी घर गृहस्थी में देह में पुत्र में पत्नी में धन में कहीं भी मेरी आसक्ति न हो, मुझे ऐसा सौभाग्य दीजिए कि आपके दासों के साथ मेरी प्रीति हो, भक्तों के साथ मेरा प्रेम हो। भगवान इंद्र और देवता लोग चकित होकर के सब देख रहे थे। युद्ध के उस भीषण अवसर पर वृत्रासुर की चित्तवृत्ति इस तरह से भगवान श्रीकृष्ण में लगी हुई थी, तो इसको दृढ़ा मति ही कहते, जिसकी आवृत्ति इसमें कर रहे हैं। बाद में वृत्रासुर की प्रार्थना से ही भगवान इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और वृत्रासुर के शरीर से एक महद ज्योति निकली, जीव जो देखते देखते सबके भगवान को प्राप्त कर दिया। तो इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। यहां पर प्रश्न का कारण यह है, भगवत भक्ति एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ वस्तु है, वह किसी योग्य पात्र में ही जन्म लेती है, जहां तहां नहीं जन्मती है। भक्ति के लिए योग्य भूमिका चाहिए, जैसे कल्प वृक्ष सब जगह नहीं उगता है, इस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं उगता है, स्वर्ग में अपने आप उगता रहता है। इस पृथ्वी पर तो अपने आप उगने वाले कंठीले बबूल हैं और सब बेर आदि झाड़ियां लेकिन और जो अच्छे वृक्ष हैं उनको लगाना पड़ता है, उनकी रक्षा करनी पड़ती है, तब भी जल्दी नहीं लग पाते। स्वर्ग में अपने आप कल्प वृक्ष उगते हैं। भक्ति सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, श्री भगवान को भी अपने वश में कर लेती है, भुक्ति मुक्ति को पुरस्कृत कर देती है। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति का उद्रेक होता है, भक्ति का थोड़ा भी जन्म होता है, तो वह व्यक्ति स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, भोग नहीं चाहता, योग सिद्धि नहीं चाहता। तो ऐसी दुर्लभ वस्तु के उगने के लिए, जन्म लेने के लिए बहुत योग्यतम भूमि चाहिए, हृदय चाहिए। वृत्रासुर का जहां तक प्रश्न है, वृत्रासुर का जीवन देखा जाए तो केवल लड़ाई झगड़ा में रहते, और वो किससे युद्ध उनका चल रहा था? देवताओं से, जो भगवान के भक्त हैं। देवताओं को मारना काटना यही काम था। देवता लोग उनसे लड़ने आए तो सबके आयुध को खा गए थे, और ऐसा गरजे थे युद्ध में कि सब बेहोश होकर के गिर गए थे, और ऊपर से वृत्रासुर रौंद रहे थे देवताओं को, जैसे हाथी बांस के झुरमिट को रौंद है, उस तरह से वृत्रासुर रौंद है। तो उनका स्वभाव था, देखने में लगता था कि यह व्यक्ति घोर रजोगुणी है, तमोगुणी है, इसके भीतर बहुत क्रोध है। ऐसा देखा भी जाए कि युद्ध में भी उन्होंने इंद्र पर प्रहार किया, आरावत पर प्रहार किया। वास्तव में प्रहार जो किए इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए किए, परंतु सामान्य रूप से देखा जाए तो लगता है कि वृत्रासुर दूसरों के पीछे पागल है, ये स्वर्ग चाहते हैं, इंद्र का वध करके अधिकार चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। और इधर युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी भक्ति देखी गई, उन्नति देखी गई, तो दोनों का मेल नहीं हो रहा। इसी पर महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, रजह तमह स्वभाव से ग्रहणम वृत्रस्य पाप मन है नारायण भगवती कथम आसिद्ध रहमति। हे ब्रह्मन, महाराज परीक्षित पूछते हैं, और श्री सुखदेव गोस्वामी तो सबसे पहले ब्राह्मण संबोधन कर रहे हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद या श्री भगवान, जो श्री भगवान को और वेद को जानता है उसे ब्राह्मण कहें, ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहें। तो श्री सुखदेव गोस्वामी के इस गुण को महाराज परीक्षित प्रकट कर रहे हैं कि आप तो सर्वज्ञ हों, अतः इस रहस्य को अवश्य जानते होंगे। वृत्रासुर रजह तमह स्वभाव से, रजह तमह च स्वभाव जस्य। वृत्रासुर का ऐसा स्वभाव था घोर रजोगुणी और घोर तमोगुणी, और यह कहा जाए कि वृत्रासुर और कैसे थे तो मूर्तिमान पाप था वास्तव में वृत्रासुर। ब्रह्म वृत्र से पाप मन पापमा, मूर्तिमान पाप का। पर ऐसे व्यक्ति की भगवती नारायण दृढ़ मति कथम आसी, ऐसे वृत्रासुर की दृढ़ मति भगवान नारायण कैसे हुई? रजोगुण और तमोगुण के काम तो दूसरे में मन लगता है, भगवान में तो मन लगता नहीं है। आज तक तो ऐसा कोई युद्ध नहीं सुना गया कि युद्ध के अवसर पर कोई व्यक्ति इस तरह भगवान श्रीकृष्ण में अकाष्ट हो और प्रार्थना करे और मरना चाहे, शरीर त्यागना चाहे। तो जो व्यक्ति शरीर त्यागना चाहता है और भगवान के चरण कमल को पाना चाहता है, तो उसमें अब स्वर्ग पाने की और विषय भोग करने की व्यवस्था कहाँ है? कहीं नहीं। कि दोनों बातों का कोई मेल नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो वृत्रासुर बहुत बड़े पापी थे, बहुत बड़े शहर में थे, रजह तमह स्वभाव से, और इधर नारायण गृह मति, दोनों बिल्कुल विपरीत है। ये हुआ कैसे? भगवान मति का कारण पूछते हैं। यह है बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग रजोगुण में हैं या तमोगुण में, कोई कोई भक्त सत्वगुण में रहते हैं, लेकिन रजह स्वभाव है हम लोगों का। विषय भोगों की अभिलाषा बनी रहती है, वस्तुओं की कामना और बनी रहती है, इसको रजोगुण स्वभाव कहते हैं। रजह कर्मणि भारत, भगवान गीता में कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाता है, इंद्रिय तृप्ति के कर्मों में, और तमोगुण क्रोध में, आलस्य में, निद्रा में नियोजित कर देता है। तो यही स्वभाव है किसी व्यक्ति को अगर खून छोड़ दिया जाए कि आप भजन कीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। इसलिए नियम बना करके क्या करना है, इस समय जगना है, ये अटेंड करना है, यह करना है, यह करना है, तब जाकर थोड़ा भजन कर लेता है। क्योंकि स्वतंत्र छोड़े हुए लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो इस प्रकार से तमोगुणी व्यक्ति आलस्य में रहता है, वो घर का काम भी नहीं करता है, भजन की तो बात दूर है। और रजोगुणी बहुत कर्म में तत्पर रहता है, यह इकट्ठा करना है, यह प्राप्त करना है, यहां जाना है, ये करना है, वो करना है, आज इसको युद्ध में जीत लिया, कल उसको जीतना है, कल वह साम्राज्य लेना है, कल उस देश को अपने बस में करना है, जैसा सुन ही रहे न्यूज पेपर आदि में। इसको रजोगुण कहते हैं, घोर रजक। इस प्रकार का व्यक्ति कैसे भगवान में उस प्रकार मति लगा चुका है। प्रश्न स्पष्ट है कि आप वृत्रासुर के जीवन में जैसे जन्म हुआ तब से लेकर काम तो कोई उन्होंने साधन किया नहीं, और अपने पिता को त्वष्टा के दक्षिणाग्नि में पैदा किए गए, विश्वरूप नई इंद्र का वध करने के लिए इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया था, इसलिए विश्वरूप के पिता भी बहुत दुखी थे, क्रुद्ध थे, अतः उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए पुत्र चाहा। तो हुए वृत्रासुर, जन्म लेते हुए विशाल पर्वत के समान हो गए, बहुत दिन बढ़ने में नहीं लगा था, और तो प्रकट होते ही यज्ञ में वे देवताओं को मारने के लिए चल दिए, युद्ध करने के लिए चल दिए, क्योंकि उस भाव से पैदा किए गए थे कि इंद्र का वध करना है, तो वही हिंसक प्रवृत्ति वृत्रासुर में काम कर रही थी, हिंसा करने की, मारने की। इसी से देवता लोग डर करके भगवान की शरण में गए, तब भगवान ने कहा कि गर्भवती मुनि से अस्थि से वज्र बनेगा, उससे वृत्रासुर मारा जाएगा। तो जो भी हो, वृत्रासुर के जन्म से लेकर और मरा उनमें कोई सुकृत नहीं देखा गया, केवल पाप देखा गया। तो ऐसे पापी व्यक्ति की, ऐसे रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति की मति भगवान ने कैसे लगी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं यह कह रहा था कि प्राय संसार में लोग रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं, सत्वगुण में कभी कभी किसी किसी की मति होती है। तो यह प्रश्न हम लोगों के लिए बड़ा उपादेय है, रजोगुण में और तमोगुण में होते हुए भी कैसे भगवान में मति रह सकती है, यह प्रश्न है कैसे हुई। तो वो भी नारायण भगवती, भगवान नारायण में कैसे दृढ़ मति हुई। नर का अर्थ होता है जीव, और नार का अर्थ होता है जीव समूह, और अयन का अर्थ होता है आश्रय घर। जो प्रभु नरों नर समूह में ही रहते हैं, गोपों के बीच रहते हैं या जादवों के बीच रहते हैं, इसीलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। ऐसे नारायण में श्री कृष्ण में दृढ़ मति कैसे हुई। अथवा नार का अर्थ है जल समूह, और अयन का अर्थ है वास, जो क्षीर समुद्र में जो गर्भ समुद्र में निवास करते हैं उन्हें नारायण कहते हैं, वो समस्त जीवों के आश्रय हैं। भगवान का सब कुछ प्रकृति से पार है, दिव्य है, चिन्मय है। तो प्रकृति के अधीन रहने वाले व्यक्ति अपने मन को कैसे भगवान में रख पाया, उसके लिए तो साधन करके स्वयं अप्राकृत बनना पड़ता है, विशुद्ध सत्व में आना पड़ता है, तब जाकर मति भगवान में लगती है। तो वृत्रासुर की मति कैसे लग गई, इसको सामान्य उदाहरण द्वारा कब सिद्ध कर रहे हैं कि रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति की मति नहीं लगती है। ये तो बात छोड़ दीजिए, देवा नाम शुद्ध सत्वा नाम ऋषिणाम चामलात्म नाम भक्तिर मुकुंद चरण न प्रायण हो जाए। यहां तक कि जो देवता है मनुष्यों की तो बात छोड़ दी जाए, ये तो रजोगुणी तमोगुणी है ही, जो देवता सत्वगुण में रहते हैं, सत्य प्रधान जिनमें होता है, रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल दबा रहता है, शून्य सा रहता है, जो सत्वगुण में रहते हैं, और ऋषिजन जो इस पृथ्वी पर ही रहते हैं, जो साधु हो गए हैं, ऋषि हो गए हैं, जिनका हृदय राग द्वेष आदि से शून्य है, निर्मल है, जिनके हृदय में मल नहीं है, इन लोगों को भी देखा जाता है उनके जीवन में कि प्रायः भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होती है। भक्ति मुकुंद चरण न प्राणियों उपजाते, प्राय ऐसा देखा जाता है। महाराज परीक्षित को पता है देवताओं के विषय में, वे शुद्ध सत्व में रहते हैं, अप्राकृत स्थिति नहीं, लेकिन यहां अर्थ है कि रजोगुण तमोगुण बहुत कम में होता है, सत्व ही ज्यादा रहता है, और ऋषियों में भी, लेकिन उनमें भी देखा जाता है भगवान के चरणों में प्राय भक्ति नहीं होती है। कोई अपने को मुक्त करना चाहता है, ब्रह्म में लीन होना चाहता है, और देवता आदि भी जो सत्व में रहते हैं वे भी दिखाया जाता है कि स्वर्ग में शासन करना चाहते हैं, अप्सराओं को भोगना चाहते हैं, अमृत पीना चाहते हैं। भगवान के चरणों में प्रायः सुदृढ़ प्रेम नहीं देखा जाता है। तो सत्वगुण में रहने वाले देवताओं में और ऋषियों में भी जब भगवान की भक्ति जन्म नहीं ले पाती है, तो इस पापी वृत्रासुर में कैसे भक्ति उत्पन्न हो गई, यह आश्चर्य की बात है। देवानाम शुद्ध सत्वानाम, वहां सत्व का अर्थ हृदय, शुद्ध सत्व का अर्थ जिनका हृदय शुद्ध है, या शुद्ध सत्व का अर्थ अप्राकृत सत्व नहीं है, वो चिन्मय स्थिति नहीं, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, ये देवताओं का और ऋषियों का दोनों का विशेषण है। और ऋषियों के लिए विशेष बात है अमलात्मनाम, न मलो आत्मनी जैसा तासा तेसाम, जिनके हृदय में कोई मल नहीं है उनका अमलात्मा का, आत्मा का अर्थ है मन, मन में है बहुत मल भरा हुआ है। और मन का मल क्या है, संसार के विषयों की जो अभिलाषा है, काम है, यही है मल, और यही क्रोध का रूप धारण करता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, यही लोभ का रूप धारण करता है, द्वेष का रूप धारण करता है, सब कुछ। तो हृदय में काम लोभा भी मलई, काम और लोभ ही मल है, भय होगा। लेकिन कुछ ऐसे ऋषि जन होते हैं, साधना करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, तो उनके हृदय से ये मल नष्ट हो जाते हैं, विषय भोग की आसक्ति नहीं आती है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण में उनकी मति नहीं हो पाती है, ये आश्चर्य की बात है। यदि आजकल जब तथा कथित ऋषियों को देखा जाए, बहुत सन्यासी भरे पड़े हैं या साधु महात्मा हैं, विविध प्रकार से घूम रहे हैं, लेकिन कृष्ण में प्रेम नहीं देखा जाता, बहुत कम लोगों का ऐसा स्वभाव देखा जाता है वो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। नहीं तो कुछ ऋषि लोग तो इसी आशा में है कि अब वो ब्रह्म होने जा रहे हैं, कुछ ही दिन में हो जाए, चाहे हो गए हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न नाथ अपने मन ब्रह्म हो गए, ऐसे ऐसे हमने सुना है कि कुछ लोगों को यदि हजारों लोग कहें एक साथ कि हम तो आपको ही भगवान मानते हैं, तो वो मौन हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम्हारा अनुमान गलत नहीं होगा, जो तुम सोचते हो वही मैं हूं। तो वो गुरु प्रमाण नहीं है, प्रमाण शिष्य है, वो जो कह देते हैं वही सत्य है। एक बार की सत्य बात है, व्यक्ति से गुडा कृष्ण ने पूछा, आपको लोग भगवान कहते हैं तो आप क्यों स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अपने शिष्यों का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, तो सामने बैठ कर बात किए तो अच्छी बात है कि हमको कह दिया कि पर ब्रह्म भगवान अवतार लिए हैं, तो मैं यह बात इस बात का विरोध न करूं क्योंकि हमारे शिष्य दुखी हो जाए, इसलिए वो जो कह दे रही मान लो। तो ऐसे भरे पड़े हैं लोग जो अपने मुख से तो नहीं कहते हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन उनके शिष्य चारों तरफ छापते भी हैं, बोलते भी हैं, वो सब सह लेते हैं क्योंकि शिष्यों का दिल नहीं दुखाना चाहते। और उनको सुख मिलता है उनको भगवान बना करके, ऐसे तो सुख मिलेगा ना। तो इस तरह से तथा कभी समाज में ऋषि बनते हैं लोग, कहलाते हैं साधु महात्मा, लेकिन भगवान से कोई प्रेम नहीं। घर घर में अपना ही फोटो देते हैं, बस इसी की पूजा करो रखो। इनको तो खैर ऋषि भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के युग में उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, जिनको समाज ऋषि मानता है, हम नहीं मानते हैं, शास्त्र के अनुसार ऋषि नहीं है, लेकिन जिनको ऋषि मानता है समाज में, व्यक्ति आप देखेंगे कि ज्यादातर निराकारवादी ही है, ज्यादातर ऐसे, और थोड़ा ध्यान आदि करना तो कर लेते हैं, बाकी महामंत्र का जप या भगवान के श्री विग्रह की पूजा या दंडवत तो जाने ही नहीं, चाहे जीवन में एक बार भी भगवान को दंडवत नहीं किए होंगे। उनको लाखों लोग दंडवत करते होंगे, लेकिन वे भगवान को दंडवत नहीं कर सकते। इस प्रकार ये तो सामान्य जनमत के अनुसार मैं कह रहा हूं, यहां ऋषि ऋषि कोई है नहीं समय, लेकिन वास्तव में जो ऋषि होते हैं शुद्ध, जिनका हृदय है राग द्वेष नहीं है, उनकी भी प्राय शांति निष्ठा देखी जाती है, वो शांत रहते हैं और राग द्वेष तो होता नहीं है, परंतु ये समझते हैं कि हम स्वयं भगवान हैं, और चाहे भगवान नहीं भी है तो कुछ ही दिन में अब हम भगवान में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि विषय भोग की लालसा नहीं होती है, परंतु अपना स्वार्थ इतना घनीभूत होता है कि उसके आगे भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, तो मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्म से मिलना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस पर कहते हैं कि वे अपने फेरे में पड़े रहते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, और देखा जाता है कि परिवार छोड़ दिए मुक्त हो गए, परिवार की आसक्ति से मुक्त हो गए, समाज की जिम्मेवारी से मुक्त हो गए, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब भगवत भक्ति के रस का अनुभव नहीं होता है तो उनके मन में यह इच्छा इतनी उदित होती है कि अब समाज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उधर असानुभूति हुई नहीं, अब समाज की सेवा करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस समाज को छोड़ करके गए थे उसी समाज में आकर के स्कूल और हॉस्पिटल खोलने लगे, ये मुक्त जिनको माना जाता है उनकी दशा प्रभुपाद जी व्यक्त कर। तो मुक्त कहां हुए, ऐसे लोग मुक्त भी नहीं हो पाते, तो प्रायः निकुंज के चरणों में भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती है। ये प्रायः शब्द जो है यह बहुतायत के लिए है, ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी निकुंज के चरणों में भक्ति नहीं होती है। तो भक्ति बहुत दुर्लभ है, इसको कहने के लिए महाराज परीक्षित कहते हैं, रजो भी सम संख्या जनतव हरिह पार्थिव पार्थिव रिह जनतव तेषा ये के समय हंत श्रेयो वही मन जागर। महाराज परीक्षित कहते हैं कि देखिए भक्ति कितनी दुर्लभ है, इस जगत में जीव कितने हैं तो रजो भी संख्या का पार्थिव रजो भी संख्या, पृथ्वी के जितने वज हैं या पृथ्वी को पीस दिया जाए जितने सूक्ष्म कण बनेंगे उतने जीव हैं इस संसार में, पार्थिव रजो भी संख्या का, पार्थिव का अर्थ पृथ्वी के, रजो भी धूलिकणों के समान जंतु है, जंतु बहुत जीव है, अनंता इत्यर्थ श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि इसका अर्थ है अनंत, अनंत जीव है, कई प्रकार की योनियां हैं, जैसे जलचर है, थलचर है, नवचर है, ये बाद में हम बताएंगे चैतन्य चैतन्य के अनुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वर्गीकरण किया है। जो जीव वास्तव में कर्कण है, हम लोगों के शरीर में भी कोटि कोटि जीव भरे पड़े हैं, यदि एक जीव शरीर का प्रोड्यूसर है, लेकिन एक जीव के शरीर में दवा है, चर्म है, मलमूत्र है, उसमें बहुत जीव भरे पड़े हैं। एक मनुष्य के शरीर में कम से कम कई कोटि जीव दूसरे भय, तो सर्वम जीव मयम जगत, यह सारा जगत जीवमय है, सब जगह जीव है, जय में स्थल स्थल में नभ में सब जगह जीव है। महाराज तरीके से कहते कि रजो भी सम फल ख्याता पार्थिव जनता, लेकिन इतने जीव भरे पड़े हैं पशु पक्षी कीट पतंग सब, लेकिन इसमें कुछ ही जीव हैं जो श्रेय का आचरण करते हैं, अपने धर्म को समझ करके धर्म में रुचि रखते हैं, धर्म का पालन करते हैं। तो उसमें कहते हैं मनुज आ गया, मनुज आ गया, और तो कुछ करते नहीं है। मछलियों में एक भी कोई पूजा पाठ नहीं करती है, और पशुओं में गाय बैल बकरी भेड़ में कोई भी कुछ नहीं करता है, उनमें कोई भी ध्यान या पूजा धर्म का आचरण कुछ नहीं है। कीट पतंग कुछ करते ही नहीं है, मनुष्य में कुछ लोग करते हैं। कृपा मई केचल की हम थे श्रेय श्रेय अकेले मन जाते हैं, मनुष्य भी करते हैं। यह प्रश्न हो सकता है क्या सभी मनुष्य करते हैं धर्म का आचरण? नहीं नहीं, मनुष्यों में कुछ लोग करते हैं, धर्म को समझते हैं, आश्रय करते हैं, और तो सब नहीं करते हैं। यदि समस्त जीवों की संख्या के सामने तुलना किया जाए मनुष्यों की संख्या, तो वह बहुत कम है, बहुत कम है। और सुनिए इसी श्लोक के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, एक तो ब्रह्मांड भई अनंत जीवगण 84 लाख जनी पे करे भ्रमण। एक एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन एक ब्रह्मांड में भई एक ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, अनंत जीव है, कोने कोने में ब्रह्मांड में जीव भरे पड़े हैं, स्वर्ग में पताल में पृथ्वी पर सौ 84 लाख जोनी तो कया है ब्रह्मांड, 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उसमें ये सब जीव घूमते रहते हैं, घूमते रहते। आज हमसे एक व्यक्ति प्रश्न किए कि जब जीव एक समान है, घटते बढ़ते नहीं है, तो मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ रही है? वो ये नहीं समझ रहे थे कि जीव जोनिया बदलते रहते, शरीर बदलते रहते, कोई ये शरीर छोड़कर मनुष्य शरीर में आ गया, मनुष्य शरीर छोड़कर के पशु शरीर में चला गया, लेकिन इतने ही घूमते रहेंगे, नया बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, शरीर बदलता रहता है। तो 84 लाख जोनी थे कराए भ्रमण, जैसे हम लोग रोज रोज बदलते रहते हैं, अभी ट्रेन से आए आए तो रिक्शा पकड़ लेते हैं, बस पकड़ लेते हैं, रोज रोज बदल रहे हैं, लेकिन आदमी तो लगभग उतने ही है, ऐसे आदमियों में बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ कार्य के लिए मांग ले रहा है तो एक व्यक्ति टिन सवारी बदल लेता है, तो इस तरह हेर फेर होता रहता है। तो एक तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गांव 84 लाख जोनी तक कराए भ्रमण, 84 लाख प्रकार की जोनी है। जीव का साइज क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं उपनिषद के अनुसार, बालाग्र शतभाग ऐसा शतभाग कल्पित सत्य, एक बाल के अग्रभाग को यदि 100 भाग किया जाए, उसमें से फिर एक के 100 भाग किए जाए, इतना सूक्ष्म जीव है, तो इसे भरे पड़े तार मध्य स्थावर जंगमों दूरी भेद, जितने भी जीव है उनमें फिर दो भेद होता है, दूरी भेद स्थावर और जंगम। स्थावर का अर्थ होता है जो एक जगह रहते हैं, जन्म जहां हुआ वहीं रहते हैं, जैसे वृक्ष, जैसे नारियल का वृक्ष है, कई बार भागवत सुना, कई बार फेस्टिवल देखा होगा, वैसे कहीं नहीं जाते, इसको स्थावर कहते, जहां भगवान ने जन्म दे दिया वहीं। और इनको काट कर कोई ले जाए दूसरी बात है, लेकिन ये अपने आप नहीं घूम सकते, घास पेड़ पौधे सब स्थावर, जो गमला में मनुष्य काम करके उनको इधर से उधर करता है, लेकिन ये है स्थावर। और जंगम का होता है चलने वाले, जैसे मनुष्य पशु पक्षी ये सब चलते हैं, कीट पतंग भी चलते हैं, मच्छर भी चलते हैं, तो तार मध्य स्थावर जंगम दिन भेद, जंगम है जलस्थल नभच्छर विभेद, ऐसे है कि और जंगम में भी 3 प्रकार के जीव हैं, जो प्रधानता के रूप से अलग अलग रहते हैं तो उसमें कुछ जलचर हैं, थलचर हैं और नरचर, कुछ आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, प्राय पक्षी आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, कुछ थल पर भ्रमण करते हैं जैसे मनुष्य आदि पशु आदि, तो केवल जमीन पर चलते हैं, बॉम्बे से दिल्ली जाए, दिल्ली से कलकत्ता जाए, लेकिन उसी जमीन पर ही घूमते रहते हैं। मनुष्यों को नहचक नहीं कहा गया है, थोड़े काल के लिए विमान पर जाते हैं लेकिन ज्यादातर वो जमीन पर ही रहते हैं। तो ये थलचर है और नभ और जलचर जो जल में रहते हैं, जल में ही घूमते रहते हैं, इसलिए उनका थलचर जलचर नभचर ये कहा जाता है। तो जंगल में भेद है और तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्प तार, तार मध्य मृक्ष पुलिंद बौध सबर, चैतन्य महाप्रभु का विचार है, रूप गोस्वामी चार्य जिसे बताते हैं कि जितने जीव हैं थलचर नहचर जलचर इनमें तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्प तार, इनमें मनुष्यों की संख्या अति अल्प है। इस बंबई में एक घर में जितने कीट पतंग रहते होंगे छोटे छोटे जीव, तो केस के अग्र भाग हजारों भाग के बराबर होते हैं, एक घर में जितने जीव रहते होंगे उतने मनुष्य पृथ्वी पर नहीं होंगे, ये गणना है। तो तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्प तार, इनमें मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। इधर कहने वाले कहते हैं हम दो हमारे दो जानते हैं बहुत हो गए, लेकिन मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। अच्छा, उन मनुष्यों में भी देखिए किस तरह से भक्ति दुर्लभ है, तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध सब, मनुष्यों में भी ज्यादातर ये क्रिश्चियन आदि भरे पड़े हैं, ये मुस्लिम है, जवन और मलेच्छ का अनुवाद यहां किया जाए तो यही होगा, तार मध्य मलेच्छ बौद्ध, तार मध्य मलेच्छ बौद्ध जवन सब, देखिए मनुष्यों की संख्या किस तरह से चेतन महावीर बांट रहे हैं। आज प्रकट देखा जा रहा है मनुष्यों की संख्या अति अल्प है, तो उसमें भी ज्यादातर बौद्ध है, सबर है और यवन है, मलेच्छ है, मलेच्छ और यवन का अनुवाद ही क्रिश्चियन और मुसलमान किया जाता है, गोमांस खाते रहते हैं, गोमांस खाते हैं सब मलेच्छ आदि, तो ज्यादातर यही पृथ्वी पर भरे पड़े हैं। ये तो भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है उनके द्वारा, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मलेच्छ जवन बौद्ध सब, ये सब भरे पड़े। अच्छा, अब तो छोड़ दीजिए दूसरे की बात, अब आइए जो वेद मानते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेद निष्ठ मध्य अर्ध वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं जाने, जो वेद को जो मानने वाले हैं उनमें से आधा तो ऐसे हैं जो केवल मुंह से वेद मानते हैं, करते नहीं है वेद के अनुसार आचरण, कहते हैं कि हम वेद के अनुसार चलते हैं, हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन मुंह से कहते हैं वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, मुखे माने और वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं जाने, वेद जिन पापों को मना करता है उन पापों को भी करते रहते, कहते हैं कि हम वैदिक हैं, हम वेद के अनुसार चलते हैं, लेकिन वेद में जो निषिद्ध किया गया उस पाप को करते हैं और धर्म नहीं जाने, उनका वास्तविक धर्म पर कोई ध्यान नहीं रहता। तो सामान्य धर्म का पालन करने वाले, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का भी पालन करने वाले बहुत कम हुए। अच्छा, धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, धर्म का आचरण करने वाले जो लोग हैं वे वास्तविक धर्म का आचरण नहीं कर पाते, उसमें कर्मनिष्ठ ज्यादा है, कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, यहां गीता की भी व्याख्या लिखते हैं तो कह देते हैं इसमें कर्म करने के लिए कहा गया, कर्मनिष्ठ हो जाते हैं, बस परिवार को सजाओ, देश को सजाओ, अपने को सुखी रखो, बाकी ईश्वर से हमारा क्या संबंध है, भगवान से क्या नाता है, इस विषय में कोई ज्ञान ही नहीं रहता। उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कर्म कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, तो कोटि कोटि कर्मनिष्ठों के बीच जो कर्म इंद्रिय भोगों के में तत्पर हैं, लगे हुए हैं धर्म के नाम पर, तो इनसे करोड़ों करोड़ों में कोई एक ज्ञानी होता है जो जानता है कि यह जीवन का लक्ष्य नहीं है विषय भोग करना, अपने को जन्म मृत्यु से मुक्त करना यह लक्ष्य है, उसको ज्ञानी कहते हैं। लेकिन ज्ञानी का चित्त भी भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए नहीं मचलता है, वो अपनी मुक्ति के फेर में रहते हैं, विमुक्ति कामा। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है या कृष्ण की सेवा करनी है, इस पर ध्यान नहीं जाता। ज्ञानी प्राय है, उनको कहा जाता है एक परंपरा रूढ़ी के अनुसार, जो मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और भगवान की सेवा आदि की कोई वासना जिनको नहीं होती, कभी सोचते भी नहीं है, उनको ज्ञानी कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञानी कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, परंतु कोटि ज्ञानी मध्य है, नहीं कोटि ज्ञानी मध्य श्रेष्ठ एक कृष्ण भक्त, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, ऐसे कहते हैं चेतन महाप्रभु। कोटि कोटि ज्ञानियों में कोई एक रियली मुक्त होता है करोड़ों करोड़ों में, और कोटि मुक्त मध्य श्रेष्ठ कृष्ण भक्त, और कोटि कोटि मुक्तों के बीच में या कोटि कोटि मुक्तों से बढ़ करके एक कृष्ण का भक्त होता है, तो कितनी दुर्लभ भक्ति है। कर्मनिष्ठ होना ही बहुत कठिन है, ज्ञाननिष्ठ होना कठिन है, धर्मनिष्ठ होना कठिन है, और ऐसे कठिन होते हैं तो भक्ति करना तो और बहुत कठिन है, कृष्ण को समझना और उनसे प्रेम करना। तो कोटि मुक्त मध्य श्रेष्ठ एक कृष्ण भक्त, और वृत्रासुर ऐसे हैं, इस तरह के अनन्य भक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु विभाजन कर रहे हैं, महाराज परीक्षित उक्ति का उदाहरण देते हैं। मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। हे महामुने, हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आप जानते हैं कोटि कोटि मुक्तों में, कोटि कोटि सिद्धों में कोई एक सुदुर्लभ नारायण परायण भक्त होता है। भक्त होना, भगवान के प्रति प्रेम करना इतना दुर्लभ है, और यह दुर्लभ प्रेम वृत्रासुर को मिला हुआ था। महाराज परीक्षित इस विषय में बहुत जिज्ञासु है, ये सुनना चाहते हैं इस बात को, स्वयं वर्गीकरण किए हैं। तो वर्गीकरण करते हुए कहते हैं कि रजो भी संख्याता पार्थिव यह जनता तेसम ये किस ने हम तो श्रेय है मनुजादेव, और फिर कहते हैं प्राय मुमुक्षवस तेसम किस नय द्विजोत्तमा। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, मनुष्यों में भी जो धर्म का आचरण करते हैं तो उनमें प्राय कोई कोई ही मुमुक्षु होता है, प्राय मुमुक्षु है, केचन है। मुमुक्षु का अर्थ होता है जन्म मृत्यु से छूटने की इच्छा वाला, जो बंधन अनुभव कर रहा हो, जिसको यह प्रतीति होती है कि हम पर बंधन है, मैं बंधा हूं, मैं दुख भोग रहा हूं, मुझे बार बार जन्म मरण पसंद नहीं है, तो वह व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। मुक्त होने की जो इच्छा है उसको मुमुक्षा कहते हैं, और इस मुमुक्षा से जो युक्त होता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो मनुष्यों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुमुक्षु होना चाहते हैं, ज्यादातर बुभुक्षु है।